नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद धाम निष्कान अहमदाबाद में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आपका स्वागत है। अभी तो पाठ उत्सव श्री राधा गोविंद देव का आरंभ होने वाला है। आज से रथ यात्रा और फिर उत्सव रहेगा रामनवमी तक। आप प्रातः भागवत के लिए पधारे, आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का पांचवा अध्याय, जिसमें दक्ष के द्वारा नारद को श्राप दिया गया है, ये हमारे श्रवण वर्णन का विषय है। दक्ष प्रजापति भगवान को तो प्रसन्न किया और प्रजा को बढ़ाने के लिए पुत्र उत्पन्न किए हरियाशव नाम के, हरि के जिनका प्राण हरि हो वो हरियाशव। और पिताजी ने कहा कि बेटा तपस्या करो, और कहाँ जाके तपस्या करो, पश्चिम दिशा में जाओ, समुद्र के तट के ऊपर बहुत सुंदर स्थान है नारायण सरोवर, वहां जाकर तपस्या करो और फिर वापस आके प्रजा बढ़ाओ जैसे मैं प्रजा बढ़ा रहा हूं। तो ये दक्ष पंचजनी, इनकी माता का नाम है अक्षणी या पंचजनी, वो पंचजनी है प्रजापति की बेटी है, और ये वहां बहुत शुद्ध भाव से नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करके पवित्र होके साधन भजन में लग गए। तो नारद जी ने उनकी श्रद्धा और शुद्धता को देखा कि ये तो भगवान को प्राप्त करने, ये हरि के जिनका प्राण ही हरि है, ये हरियाशव है, अब ये संसार में क्यों फंसे। तो उनको एक दो श्लोकों में, अंग्रेजी में एलिगोरी कहती है, एलिगोरी एक ऐसा रहस्य की बात बताई, क्या बेटा इसके ऊपर आप विचार करते रहो, रहस्य की बात क्या बताई। कि ये धरती का अंत कहां है आपको पता है? धरती का अंत देखा है? अरे इस धरती के अंदर एक ऐसा खड्डा है जिसमें अंदर जो गिर जाता है बाहर निकल नहीं पाता है, और अंदर एक ही पुरुष है और बाकी एक ऐसी रोज वेश बदलने वाली स्त्री है पुंछड़ी, और जो उसके चक्कर में पड़ गया वो कभी वहां से निकल सकता नहीं है। अंदर एक नदी है जो दोनों तरफ से बहती है, और अब जाके आप विचार करो इसके ऊपर, ऐसे कुछ बातें कह दी और फिर नारद चले गए। सीधा प्रचार नहीं किया। एक कुछ रहस्य की बातें बता के चले गए। तो 8 श्लोक तक कल चर्चा हुई थी, आज 9वां श्लोक पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे 11वें श्लोक तक। 9वें श्लोक में लिखा है, कथम स्वपित्रो आदेशम अविद्वान सो विकसित अनुरूपम अवज्ञाया अहो सर्गम करिष्यत। कथम स्वपित्र आदेशम, आप अपने पिता के आदेश से, आपके पिता ने आपको आदेश दिया, क्या आदेश दिया है पिता ने, आपके पिता ने आदेश दिया है सर्गम करिष्यत, बड़ा आप सृष्टि बढ़ाओ। सर्ग का मतलब है सृष्टि, आपके पिता ने कहा है आपको सृष्टि बढ़ाओ। अविद्वान सो विपश्चित है, लेकिन आप आपके पिताजी के बुद्धिमान तो नहीं हो, पिताजी आपका बड़ा बुद्धिमान है, विपश्चित है, हाँ उतने आप तो नहीं है, अनुरूपम उसके समान नहीं है, अविघ्न उतने आप ज्यादा समझदार नहीं है, पिताजी आपके समझदार है, आप उतने समझदार नहीं है। तो ये श्लोक सुखदेव महाराज कहते हैं, ऐसे नारद जी ने कहा, क्या कहा, हाय तुम्हारा पिता तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, किंतु तुम उनके असली आदेश को नहीं जानते। अपने पिता के असली उद्देश्य को जाने बिना तुम किस तरह संतान उत्पन्न करोगे। नारद ने कहा कि आपके पिता तो बड़ा विद्वान है, लेकिन आपको पता नहीं लगता है, आप कैसे सृष्टि बढ़ाओगे, पिता की बात को समझे ही नहीं हो। असल में पिता तो भगवान है, उसने कहा है वापस घर लौट के आना। दुनिया वाले पिता कहते हैं धंधा करो, तो दुनिया वाले पिता की बात मानेंगे कि भगवान की बात मानेंगे जो असली पिता है। बात तो बड़ी रहस्य की है। अब एक और श्लोक आगे नारद पढ़ते हैं, 10वां, श्री शुक उवाच तन्निष्मया अथ हरिष्या हरियाशवा औतपति कह मनीष्या वाच कूटम तु देव ऋषिया स्वयं विमर्शो धिया। अब सुखदेव गोस्वामी नारद तो इतना 3 श्लोक बोल के चले गए, और फिर निष्मय अथ हरिशाव उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पहले तो उन्होंने श्रवण किया नारद को अच्छी तरह से, और नारद की बात सुनने के बाद हरीशो ने क्या किया, अनुपतिक औतपतिक औतपतिक मनीष्या, उन्होंने उनके अंदर एक जिज्ञासा जागृत हो गई कि आखिर नारद हमको कह के गया है तो उसका कोई तो मतलब होगा ना, ऐसे तो नहीं नारद वाले गया। तो उन्होंने थोड़ा सा विचार किया, जागृत हो गए। नारद का काम है जगाना, साधु संत का काम है जगाना, और जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, लोग तो माया की गोद में सोए हुए हैं, उसको जगाना साधु का काम है, मनोरंजन करना साधु का काम नहीं है। तो नारद उनको जगा के गए अवेकिन, और उन्होंने क्या किया, मनीष्या वाचा, मनीष्या का मतलब है बहुत विचार करना, मन से किसी चीज को, चीज को समझने का प्रयास करना। तो मन के पास जो उनकी शक्ति थी उनसे समझने का, क्या समझने का प्रयास किया, वचा, नारद के वचन को। नारद के वचन कैसे थे, कूट, नारद के कूट वचन को। कूट वचन का यहां शब्द अर्थ में लिखा है, कूट वचन, कूट का मतलब है आसानी से समझ में न आने वाली बात, जो बात आसानी से समझ में नहीं आए। नारद ने ऐसी बात कही जो आसानी से समझ में नहीं आएगी, तो उसको समझने का कैसे प्रयास किया, देवऋषि ने जो कहा था, स्वयं अपने आप विमर्श हो, उसका विचार करने लगे अपनी बुद्धि से, तो हरियाश्व नारद के वचनों के ऊपर वो जागृत हो गए कि नारद ने कहा है, तो इसका कोई रहस्य क्या है, ये वचन बड़े रहस्यमय हैं। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से जो शुद्ध हो चुकी थी साधन से उसका विचार विमर्श किया, तो उनको क्या समझ में आया। अब ये पांच छह श्लोकों में नारद ने जो कूट वचन कहे हैं उनका अर्थ समझ में आ रहा है। तो आज जो श्लोक हम 11वां पढ़ेंगे, इसमें पहली जो बात कही है कि आपने इस दुनिया का अंत नहीं देखा है, उसका अर्थ अब बताया जा रहा है। तो आइए ये श्लोक पढ़िए। भूक्षेत्रम जीव संज्ञां यदा अनादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किमसत्करं भिर्भवे। तो ये पांचवें अध्याय छठे स्कंद पांचवें अध्याय का 11वां श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अब वो दक्ष के पुत्र नारद के कूट वचनों को अपनी बुद्धि से विचार करने लगे, तो पहले उनको समझ में क्या आया, ये श्लोक है। भूवक्षेत्रम जीव संज्ञां अनादि निज बंधनम अदृष्ट तस्य निर्वाणम किम असत्करम भिर्भवे। भूक्षेत्रम जीव संज्ञां अनादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किमसत्करं भिर्भवे। तो इसका उच्चारण कीजिए। किमसत्करं भिर्भवे। भू क्षेत्र जीव संज्ञाम यद कहना, धरती का अर्थ आपने नहीं समझा। धरती को क्या कहते हैं, भू, भूलोक। तो धरती का अर्थ हरियाश्व ने समझा कि यह शरीर जो क्षेत्र है। जीव संज्ञा यद, जीव का जो ये शरीर है ये क्षेत्र है, वो हो गया भू। भू का अर्थ क्या है, जहां कर्म किए जाएं, जिसको क्षेत्र भगवत गीता में कहा गया है, जिसमें जीव आत्मा कर्म करता है। भाई खेत जिसमें किसान बीज बोता है, तो ये शरीर जिसमें कर्मों का बीज बोया जाता है। तो ये भू क्षेत्र, भू क्षेत्रम, क्षेत्रम का मतलब शरीर, जीव आत्मा के शरीर को भू की संज्ञा दी गई। तो ये हमारा जो शरीर है ये क्या है, ये क्षेत्र है। काय का क्षेत्र है कर्मों के बीज बोने का, कौन बोता है इसमें, जीवात्मा। और अनादि निज बंधनम, और ये कर्म कैसे हैं, अनादि निज बंधनम, अपने आप को बंधन में डाला है कब से, अनादि काल से। जीवात्मा शरीर धारण करके कर्म करके अनादि काल से अपने को कर्म के फल भोगने के बंधन में डाल चुका है। अदृष्ट से निर्वाण, वैसे निर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति, वाण का मतलब बाण, बाण का मतलब तीर लगना, बाण मतलब एरोस, तीर। इस संसार में जो पीड़ा होती है, दुख होता है, जन्म मृत्यु का, इसको बाण कहते हैं, ये दुख रहे। और निर्वाण मतलब इस दुख से मुक्त होना। तो मुक्ति निर्वाण का एक अर्थ है, मुक्ति एक निर्वाण का अर्थ है, दुखों से मुक्त होना, अनादि बंधन से मुक्त होना। निर्वाण का मतलब बंधन से मुक्त होना। अदृष्ट, वो देखता, उनको पता नहीं है, वो देख नहीं सकते हैं, वो समझ नहीं सकते हैं कि अनादि काल से इस जन्म मृत्यु के दुख कैसे भोग रहे हैं, ये बंद कैसे होगा, इससे छूटेंगे कैसे। अदृष्ट तस्य निर्वाणम, इनको इस अनादि, हमको इस अनादि जन्म मृत्यु के चक्कर से कर्मों के फल भोगने से मुक्त होने का पता नहीं है। कि मसत कर्म भीर भवेता, तो फिर ये असत कर्म, सत्कर्म सदा के लिए रहने वाले, जो सत्कर्म कहते हैं उसको सताम कहते हैं, वो भक्त होते हैं, और असत कर्म मतलब संसार के कर्म करने वाले। तो फिर असत कर्म करने वाले कैसे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, तो ये आज का श्लोक है। अब श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद इसके ऊपर देखिए। हरियाशव ने नारद के शब्दों का अर्थ इस प्रकार समझा, तो एक का है, अभी तीन चार श्लोकों में सब चीजों का अर्थ आएगा। भू शब्द का अर्थ क्षेत्र का द्योतिक है, भू का मतलब क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब शरीर। ये भौतिक शरीर जो मनुष्य के कर्मों का फल होता है, उसका कर्म क्षेत्र, और ये उसे झूठी उपाधियां देता है। ये जो क्षेत्र है, झूठी उपाय, कभी देवता बोलता है, कभी मनुष्य है, कभी बोलता है कि मैं राजा हूं, कभी बोलता है कि मैं नौकर हूं, तो ये संसार में बंधन का कारण है। किससे? झूठी उपाधियों से, जो शरीर की उपाधियां हैं, 84 लाख की शरीर की उपाधियां हैं, उसके कर्म क्षेत्र हैं, और ये उसे झूठी उपाधियां देता है। अनादि काल से मनुष्य को विविध प्रकार के भौतिक शरीर प्राप्त होते रहे हैं, जो भौतिक जगत से बंधन के मूल हैं। कब से ये शरीर प्राप्त करते आ रहे हैं, बार बार, कुछ इसका अता पता नहीं है, अनादि काल से आ रहे हैं, इससे कैसे छूटा जाए समझ में नहीं आए। यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश क्षणिक सकाम कर्मों में अपने को लगाता है और इस बंधन को समाप्त करने की ओर नहीं देखता, तो उसके कर्मों का क्या लाभ मिलेगा। अभी अपने आप सोच रहे हैं कि नारद जी कहते हैं कि अगर हम फिर जाके प्रजा उत्पन्न करके संसार के काम में लग जाएंगे, तो हम अनादि काल से इस कर्म के चक्कर से कैसे मुक्त हो पाएंगे। सो नारद जी के कूट वचनों में ये जो पहला वचन है कि ये धरती का अंत नहीं है, मतलब इन शरीरों को प्राप्त करने का कोई अंत नहीं है। शरीर प्राप्त क्यों होते हैं? कर्मों के कारण। कर्म कब से शुरू हुए? अनादि काल से। तो इनसे मुक्त कर्मों से नहीं हुआ जा सकता, कर्मों के बंधन से, सकाम कर्मों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, ये बात समझनी है। कर्मों के बंधन से सकाम कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते, कर्मों के बंधन से केवल भक्ति से मुक्त हो सकते। नारद भक्ति का आचार्य है, तो उन्होंने सूचना दी कि तुम ये बात दोबारा जाके संसार में जाओगे तो मुक्त नहीं हो पाओगे। अब श्री प्रभुपाद के तात्पर्य को देखिए। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्र हरियाशव को से रूपक शैली में 10 विषयों की चर्चा की है। तो नारद जी ने 2 श्लोकों में 10 बातें कही हैं। कैसे कही हैं? रूपक, रूपक का मतलब असली बात नहीं कही है, उसका एक उदाहरण दे दिया है। रूपक इसको बोलते हैं, एलोगरी अंग्रेजी में, इसको हिंदी में होगा रूपक। जैसे जैसे 4th स्कंद में हमने पुरंजन का रूपक पढ़ा, पुर शरीर, रंजन इसमें आनंद लेने वाला, कौन है शरीर में आनंद कौन लेता है? जीव आत्मा। तो जीव आत्मा पुरंजन है, ये शरीर वहां पुर है, और इसके अंदर अभी इस रूपक में भी एक उदाहरण आएगा आगे, एक स्त्री है जो रोज रूप बदलती रहती है, वो स्त्री पुरंजन उपाख्यान में कौन है? पुरंजन उपाख्यान में पुरंजनी कौन है? स्त्री कौन है जिसको पुरंजन चाहता है? कौन है? पुरंजन उपाख्यान में वो स्त्री जिसको देखकर पुरंजन बहुत आकर्षित होता है, उससे विवाह करता है, वो कौन है स्त्री? बुद्धि। और यहां भी वो जो स्त्री एक है इस जगत में, जो सबको रोज नए नए रूप बदल के लुभाती रहती है, वो बुद्धि, बुद्धि रूपी स्त्री। आगे आएगा बुद्धि रूपी स्त्री। सो दस जो विषय है उसमें से क्या विषय है, दस विषय क्या है? श्री प्रभुपाद जी दस विषयों के नाम लिख रहे हैं, राजा, राज्य, नदी, घर, भौतिक तत्व इत्यादि। तो उसमें उदाहरण दिया है, तो उसमें क्या क्या बताया है संसार में, जैसे पुरंजन शरीर का राजा है, ऐसे राजा राज जीवात्मी राजा है, ये शरीर उसका राज्य है। तो ऐसे नदी, नदी क्या है, भव सागर में जन्म मृत्यु दोनों तरफ बहती है, यहाँ से मरो और यहाँ से जन्म लो, दोनों तरफ वो नदी बहती है संसार में। तो दोनों तरफ से बहने वाली नदी ही जन्म और मृत्यु है। भौतिक तत्व, इन सबों पर स्वयं विचार करने के बाद हरियाश्वर ये समझ सके कि जीव अपने शरीर में बंदी बनकर सुख ढूंढता है, किंतु वो इसमें रुचि नहीं लेता कि इस बंधन से किस तरह मुक्त हुआ जाए। अब हरियाश्वर ने विचार किया कि इस शरीर में आए हैं, हमको करना क्या चाहिए, शरीर के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए कि शरीर में सुख लेना चाहिए, ये हमारे लिए एक प्रश्न है। आप अपने आप से प्रश्न पूछो कि ये शरीर में हम आए हैं कि शरीर का सुख लेने के लिए या शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए। प्रायः सारा जगत शरीर से सुख लेने की सामग्री ढूंढ रहा है। शरीर से मुक्त होने का विचार किसी को है ही नहीं। इसको ऐसे कहा जाता है, जेल के अंदर आने के बाद जेल में सुविधाएं ढूंढ रहा है, जेल से निकलने का सोच ही नहीं रहा है। भाई कई लोग ऐसे होते हैं जो जेल में जाने के बाद कहते हैं हमारे को एसी लगा दो, गर्मी बहुत है, हमारे को फोन की सुविधा दे दो, हमारा भोजन घर से आना चाहिए। तो जेल में सुविधा मांगने वाला समझदार है कि निकलने वाला समझदार है जो कहे कि जेल से कैसे निकला जाए। तो ये शरीर रूपी भी एक बंधन है, क्या इसमें भोग करना चाहिए कि इससे निकलना चाहिए, ये वो बच्चे समझने का प्रयास कर रहे थे। वो इसके ऊपर सोच क्यों रहे थे, क्योंकि तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते हैं तो शरीर को कष्ट आता है, जब कष्ट आता है तो पता लगता है कि शरीर दुख देने के लिए है, ये शरीर दुखदायी है। वैसे एक बात आज समझ लीजिए कि ये शरीर इस दुनिया में हमको दिया गया है ताकि दुख का अनुभव करें, अपमान का अनुभव करें, और दोबारा ये शरीर नम लें, नहीं लेना है, इस नतीजे के ऊपर पहुंचे। क्योंकि ये शरीर सबको दुख देता है, सबको जीवन में अपमान मिलता है, और ये सब इसीलिए मिला कि बना इसीलिए, भाई शरीरों से हम का हमें नहीं चाहिए ये भौतिक शरीर, भाई बहुत दुखदाई है। ये जब तक कोई निर्णय नहीं करता है तब तक वो भक्ति की तरफ सीरियसली आगे बढ़ ही नहीं सकता। अभी इस शरीर में एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि यहां ऐसे सुख मिल जाए तो काम चल जाएगा, ऐसे सुख मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो ये शरीर सुख है देने वाला है ही नहीं, ये शरीर असत है, जन्म हुआ है तो मरने वाला है, और इससे सुख ढूंढने वाले मरने वाले सुख हैं। आत्मा का सुख ढूंढने वाला नित्य सुख है। तो कौन से सुख की बात भरत महाराज कर रहे हैं, भरत महाराज को ऋषभ वेद बता रहे हैं ऋषभ देव, शरीर का सुख तुच्छ, इंद्रियों का सुख तो पशु पक्षी भी ले रहा है, कीट पतंग सूकर कूकर भी ले रहा है, लेकिन आप मानव हो तो कौन सा सुख ढूंढो, ब्रह्म सौख्यम अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख है, आत्मा के स्तर का जो अनंत सुख है उसको ढूंढो ना। शरीर के तुच्छ सुख के पीछे क्यों भाग रहे? सुख है शरीर में नहीं, आत्मा में। आत्मा आनंदमय है, शरीर आनंदमय नहीं है। और हम शरीर से आनंद ढूंढने का ये अभ्यास कई जन्मों से करते आ रहे हैं। शरीर से सुख मिल जाएगा, शरीर से सुख मिल जाएगा, शरीर से सुख मिल जाएगा, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। जो सुख हम ढूंढ रहे हैं वो इस शरीर में नहीं। थोड़ा सा सुख है शरीर में, क्षण, कितना? जितना तपती हुई रेत के ऊपर एक बूंद पानी का। तो अब ये पहला विषय जीवन में समझने का है, क्या शरीर भोग के लिए है या दोबारा शरीर न लेकर मुक्त होने के लिए है। वैसे कहा जाए कि आपको गाड़ी दी जाए तो गाड़ी काहे के लिए ली जाती है? हम अपने गंतव्य स्थान के ऊपर पहुंचे। भाई आपको यहां से वहां पे जाना है तो गाड़ी हायर करते हो, तो गाड़ी काहे के लिए है? कि आपको मंजिल पे पहुंचा दे। लेकिन गाड़ी में ही घूमते रहने से आपका जीवन कोई लक्ष्य प्राप्त होगा क्या? तो ये शरीर रूपी गाड़ी मिली है काहे के लिए? भगवत धाम जाने के लिए। अभी इसी में घूमते रहेंगे कि उधर जाएंगे? कल परसों ये चर्चा हुई थी कि आपको समुद्र पार करना है तो क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। समुद्र पार करने के लिए क्या चाहिए? हाँ, नाव चाहिए, नौका चाहिए, हो नाव को चलाना आना चाहिए, चलाने वाला चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए? वो जो चलाने वाले के पास होता है, तीसरा क्या चाहिए? वो चलाने वाले के साथ होगा नौका, कैप्टन के पास है चलाने वाला चप्पू, और तीसरा क्या चाहिए? वो समुद्र का मैप, हवा भी और मैप, कहां से जाना है, कहां समुद्र में कुंड है, कहां समुद्र में छुपा पहाड़ है, कहां आंधी तूफान आने का संभावना है। तो असल में ये शरीर नाव है, केवल मानव शरीर नाव है जो भव सागर पार करने के लिए मिली, और कोई 84 लाख शरीरों में नाव का काम नहीं करता है, भोग का है। बाकी सब जूनियां भोग जूनियां है, मानव जूनी भोग जूनी नहीं है। ये तप लिख तपस्या के लिए, योग के लिए, भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए। तो भव सागर को पार करने के लिए मानव शरीर बहुत सुंदर नौका है, पलवम नौका है, निर्देहम पलवम गुरु कर्ण धार। और इसका कैप्टन कौन है नौका को चलाने वाला? नाकवा कौन है? गुरु कर्णधार। और फिर मैप कौन है? अच्छा सा सहारा, रास्ता बताने वाला कौन है? फेवरेबल विंड, अच्छी सी तेज रफ्तार से आगे ले जाने वाली ये हवा कौन है? शास्त्र। तो भौतिक शरीर में भोग करने के विचार को हरिया शब्द की तरह छोड़ के इस शरीर को गुरु के निर्देश में, जैसे नारद के उन्होंने निर्देश में शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, तो फिर शरीरों के बंधन से मुक्त होने का रास्ता मिलेगा। तो एक चीज तो हमको मिल गई, नाव मिल गई, समुद्र में तो पड़े हैं, भवसागर में आ गए। अब दो चीजें चाहिए अगर बाहर निकलना है तो, एक गुरु चाहिए और एक शास्त्र चाहिए। इसका मतलब गुरु वो चाहिए जो शास्त्र समझाए, मंत्र देने वाला गुरु नहीं चाहिए। भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण को जब कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, तो क्या कृष्ण ने कोई मंत्र दिया है अर्जुन को? कोई मंत्र दिया है क्या? अर्जुन ने क्या कहा? शिक्षा दो। और कृष्ण ने क्या दिया? भगवद गीता की शिक्षा दी। अब देखें ये कि अर्जुन शिष्य बनाना भगवान श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण भगवान ने कोई मंत्र दिया क्या? क्या दिया? शिक्षा दी। उसने शिक्षा मांगी, उसने शिक्षा दी। तो गुरु, ये शरीर तो मिल गया है, अब चाहिए गुरु जो दे शिक्षा। इसलिए हमारी परंपरा में शिक्षा प्रणाली बहुत बलवान है। शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा वर्चस्व है कि शिक्षा देने वाला ही शास्त्र सिखाने वाला ही भवसागर से पार कराने का साधन देता है। ये बड़ा सावधानी से समझने का विषय है। असल में शास्त्र पढ़ना फिर भी बहुत जरूरी है। तो हरियासो ने यह विचार कर लिया, शरीरों का भोग करना जीवन मानव जन्म का उद्देश्य नहीं है। इस शरीरों के चक्कर से मुक्त होने के लिए अब हमें नारद जैसा मार्गदर्शक मिल गया है, तो थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। तो उन्होंने अपने मन से जो शुद्ध बुद्धि हो गई थी उससे ये विचार किया। तो ये बहुत सुंदर शब्द है, ये याद कर लीजिए। जीव अपने शरीर में बंद रहकर सुख ढूंढता है, किंतु वो इसमें रुचि नहीं लेता कि इस बंधन से किस तरह मुक्त हुआ जाए। ये आप अपने लिए पकड़ के रखिए कि हम इस शरीर से सुख लेने का प्रयास करें या शरीरों के बंधन से मुक्त होने के लिए चेष्टा करें। ये क्वेश्चन अपने सामने लिख के रखो, जीवन में ये क्वेश्चन आगे लिखा रखो, क्या ये शरीर भोग के लिए है या बंधन से मुक्ति के लिए है? ये मुख्य एक प्रश्न अपने सामने रखो। और आगे ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि भौतिक जगत में सारे जीव विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करने से अत्यंत सक्रिय हैं। सक्रिय का मतलब सब काम में लगे हुए हैं, दुनिया में सब काम करते हैं। चिड़िया को देखो, सुबह उठ के चली जाती है कहीं ना कहीं से दाना ढूंढने के लिए। जो कुत्ता उठता है तो रोटी ढूंढता है, तो सभी काम में लगे हुए हैं। कर्म तो सभी कर रहे हैं, शरीर में एक कोई भी दुनिया में नहीं है किसी शरीर में चुप करके बैठा हो। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए रात दिन काम करता है और शूकर तथा कुकर जैसे पशु की इंद्रिय तृप्ति हेतु दिन रात कार्य करता है। पक्षी, पशु तथा अन्य सारे बद्धजीव शरीर के भीतर बंदी आत्मा को जाने बिना विविध कार्यों में लगे रहते हैं। अब जैसे सारे पशुओं को पता तो नहीं है कि हम जीव आत्मा है, वो तो बेचारा अपने आप को शरीर मानता है और शरीर की जरूरत पूरी करता रहता है। लेकिन मनुष्य अगर पशु की तरह उसी काम में लगा रहे, इसका मतलब आहार निद्रा भय मैथुन्य, तो फिर मनुष्य जन्म का महत्व तो नहीं रह गया। ये बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं। विशेषतः मनुष्य शरीर पाकर उसका कर्तव्य हो जाता है कि वो इस तरह कर्म करे कि वो अपने को इस बंधन से छुड़ा सके। अब हमको काम तो करना ही पड़ेगा, शरीर है तो काम करना पड़ेगा, गाय है, नौका है तो चलानी पड़ेगी, पानी में खड़ी रखने से फायदा नहीं। नौका हमारे पास पड़ी है, अब वो नौका से समुद्र पार करें या डूब जाए या अंदर घूमते रहे, ये हमारे बस में है। भव सागर में घुमाते रहे, नौकाएं बहुत मिलती रहेगी। कभी कभी एक प्रभुपाद ने एक व्यक्ति को देखा, वो पानी के ऊपर तख्ते के ऊपर भागते हुए नाव के पीछे भाग रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा, ये क्या कर रहा है? बोला, सर्फिंग कर रहा है। वो सर्फिंग करते हैं ना लोग, सर्फिंग का मतलब पानी के ऊपर चलते हैं। प्रभुपाद ने कहा, ये सफरिंग है क्या सर्फिंग है? पानी के अंदर क्या खुशी, पानी के अंदर क्या सुख मिलेगा इसे? भाई समुद्र के अंदर दौड़ेगा तो क्या होगा, भाई गिरेगा तो पानी में गिरेगा ना। कहां, एक बार हम थाईलैंड में थे, भक्त हमको घुमाते हुए समुद्र में बोला, एक बनाना बोट। बनाना बोट का मतलब एक बोट क्या है कि रबड़ का एक केले जैसा एक लंबा सा रबड़ का गोला है, उसके ऊपर चढ़ के बैठो। जब बैठ जाएंगे तो आगे नाव वाला क्या करेगा, तेज नाव को चलाएगा और सीधा जाएगा तेज तर, तो आप बैठे रहेंगे, फिर एकदम वो ऐसे टर्न लेके ऐसे घुमाएगा और पूरी नाव ऐसे होगी और सब नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरेंगे फिर डूबते डूबते फिर उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो हमने उसको जब देखा, हमने बोला ये संसार में हमको नौका तो मिली है, अब गुरु इस नाखून जैसा मिल जाए जो घुमा के फिर सबको समुद्र में डुबा दे, तो ये तो ऐसा दर्श लिख रहा है कि गुरु जी देख के तेज घुमा के और फिर ऐसा चक्कर मार के संसार में दे उसको अंदर, तो बार बार वो गिरे फिर उसको क्या पकड़ रखते हैं, गिरते हैं उसी को पकड़ के बैठते हैं, फिर घूम के उसको चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। तो क्या इसी के लिए है क्या जीवन संसार के अंदर बोट जो जो बनाना बोट के ऊपर घूमते रहो, वो बनाना बोट के अंदर घूमते और उनको अच्छा लगता है, पैसा दे के घूमते। हमारे साथ गए थे वो पैसा दे के अंदर, हमने बोले भैया हमको बनाना बोट पे नहीं चलना, बनाना खाओ, बनाने के उनके ऊपर चढ़ के क्यों छिलके के ऊपर घूम रहे। हमने कहा ये धोखेबाज गुरु कैसे धोखा देते हैं, हाँ बैठ जा तुम्हारे को समुद्र पार कराता हूँ, वो बीच में जाके गिराएगा, ऐसे चक्कर लगा के वापस गिराएगा, फिर दूसरों को पकड़ के लाएगा, सबको डुबाता जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आज तो ये शरीर जो है ये बंधन से मुक्त होने के लिए है, भव सागर पार करने के लिए, सागर के अंदर ही सुख लेना है। तो एक दूसरे को प्रभुपाद ने देखा ऑस्ट्रेलिया में घूमने जा रहे थे, तो कोई आदमी ऐसे समुद्र के किनारे ऐसे हाथ को ऊपर नीचे कर रहा था, तो प्रभुपाद ने पूछा कि ये क्या कर रहा है, नहीं तो उस वक्त देखा चले गए, वापस आए तो ऐसे ही कर रहा है अभी तक। बोला कौन है क्या कर रहा है, बोला एक आदमी है मछली पकड़ रहा है, तो मछली पकड़ते ना रस्सी डाल के ऐसे करते रहते। प्रभुपाद ने बोला इतना मनुष्य जन्म मिला है और ये बगले जैसा काम कर रहा है, किनारे पे दो घंटे से खड़े एक मछली को पकड़ रहा है, मानव जन्म क्यों खराब कर रहे हैं, बगला बन जाए, सारा दिन खड़ा रहे मछली पकड़े खाए, इतना बड़ा अच्छा मानव शरीर मिला है उसका क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं। मानव जन्म के बाद भी बगले जैसा काम करे जो मछली ढूंढता फिरे तो मानव जन्म का लाभ क्या हुआ। तो ऐसे कई लोग हैं कि भाई समंदर में ही हमको अच्छा लगे, मैं नाव घूमती रहे, तो 9 लाख दुनिया समुद्र की हैं, जाओ अंदर ही बैठे रहो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं। भाई जहाज में चढ़ती जाओगे आकाश में तो उतर के कहीं चाय पानी पी नहीं सकते हो ना, नीचे धरती पे आना ही पड़ेगा कि ऊपर घूमते रहोगे। ये शरीर में बैठे हैं तो ऐसे जहाज में बैठे, तो अब जहाज में बैठे नीचे तो उतरना ही पड़ेगा ना कहीं निकलना पड़ेगा कि ऊपर ही लटके रहेंगे। तो ये भव सागर में लटकना ठीक नहीं है, इससे निकलने का सोचना चाहिए। अब जो निकलने का सोचता है वो समझदार है, जो इसी में भोग करने का सोचता है वो मूर्ख है। मानव को बंधन से मुक्त करने का विचार करना चाहिए। किंतु नारद या उनकी परंपरा के उनके प्रतिनिधि के उपदेशों के बिना लोग माया सुख भोगने के लिए अंधाधुंध शारीरिक कार्यों में लगे रहते हैं। वे वो नहीं जानते कि अपने भौतिक बंधन से किस तरह मुक्त हुआ जाए। इसलिए ऋषभदेव ने कहा कि ऐसे कर्म तनिक भी उत्तम नहीं, क्योंकि ये आत्मा को बारंबार शरीर के बंधन में डालते हैं जो 3 प्रकार के तापों से के अधीन है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं नारद या उसके प्रतिनिधि के शिक्षा के बगैर कोई शरीर के भोग से मुक्त नहीं हो सकता। इसने चैतन्य चरितमृत लिखा है माया बुद्ध जीवेर नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपा कहला दिया वेद पुराण। अपने आप कोई संसार में माया से मुक्त हो जाए संभव नहीं है, माया सबको पकड़ के बैठी, लेकिन कृष्ण ने कृपा की है। क्या कृष्ण ने कृपा की है, वेद पुराण दिया। 3 प्रकार से भगवान हमारी सहायता करते हैं, स्वयं रूपे परमात्मा के रूप में अंदर से प्रेरणा देते हैं, साधु गुरु रूपे बाहर से साधु के रूप में हमका मार्गदर्शन करते हैं, शास्त्र रूपे और वेदव्यास का अवतार लेके शास्त्र देते हैं। तो हमको इन 3 से सहायता लेनी चाहिए, परमात्मा गुरु और शास्त्र। तो नारद जी और नारद जी के परंपरा में गुरुजनों की शिक्षाओं से जीवन मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो ऋषभदेव के शब्दों में बार बार भौतिक सुख के पीछे भागते हुए जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते, शरीरों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और शरीर में क्या तकलीफ है, तीन प्रकार की तकलीफें सदा भोगनी पड़ती है, शरीर के अंदर से उत्पन्न होने वाली बीमारी, मन की चिंताएं, दूसरे प्राणियों से दिए जाने वाले दुख, जैसे मच्छर काटता है उस वहां से लेकर, और दूसरे अपने सगे संबंधी रिश्तेदार दुख देते हैं, मानव मानव को दुख देता है, और तीसरा प्रकृति का कोप, कभी अकाल आता है और कभी भूकंप आता है और कभी सुनामी आती है, कभी लड़ाई होती है, ये तो सबको भोगना पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो ये शरीरों में दुख है ही। प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्याशव तुरंत ही नारद के उपदेश का तात्पर्य समझ गए। हमारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन विशेषत्या ऐसे ही प्रबोधन के लिए है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे कृष्ण भावना का मुख्य उद्देश्य है ऐसे ही लोगों को शरीर में भोग से बचाकर कृष्ण भक्ति में लगाने के कार्यों में लगाने के लिए है। भोग से बचाना है, कृष्ण भक्ति के कार्यों में लगाने के लिए है। हम लोग मानवता को प्रबुद्ध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो कृष्ण भावना में हम क्या करते हैं, मानव को बुद्धिमान बनाते हैं कि भौतिक जगत के शरीरों में मत फंसो, शरीरों के बंधन से मुक्त होने का रास्ता निकालो, ढूंढो, समझो, और वो सिखाते हैं। प्रबुद्ध किसको कहते हैं, प्रबुद्ध का उल्टा शब्द क्या है, मूर्ख। दुनिया में लोग हैं मूर्ख, हम उनको क्या देते हैं, प्रबुद्ध बनाते हैं। मूर्ख का अपोजिट वर्ड क्या है, बुद्ध, बुद्ध मूढ़ बुद्ध। तो दुनिया है मूढ़, माया मुग्ध, दुनिया मूढ़ है, उसको बुद्ध बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हाँ प्रयत्न कर रहे हैं इसका, हम लोगों को प्रबुद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे लोगों को ये ज्ञान हो कि उन्हें आत्म साक्षात्कार तथा शरीर से दूसरे शरीर में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के निरंतर बंधन से मुक्ति के लिए तपस्या करनी चाहिए। हम कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा शरीर से, तपस्या। और कौन सी तपस्या हमको करनी पड़ती है, चार नियम का पालन। हमारी तपस्या है चार नियम का पालन और रोज भगवान के नाम का जप करना। ये जो हम चार चीजें बता रहे हैं, लोगों को प्रबुद्ध कर रहे हैं, तपस्या का मार्ग बता रहे हैं, जिससे लोग दोबारा शरीरों के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो चार नियम तपस्या है और रोज भगवत नाम जपना, ये एक बहुत उत्तम साधन है। किंतु माया अत्यंत प्रबल है, हम कितना प्रयास करें माया अत्यंत प्रबल, वो इस ज्ञान के मार्ग में रोड़े अटकाती रहे, मैं दक्ष है। इसलिए कभी कभी मनुष्य कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में जुड़ जाता है, किंतु इस आंदोलन के महत्व को न समझने से वो पुनः माया चुंगल में फंस जाता है। ये प्रभुपाद जी अपना अनुभव बताते हैं कि लोग आता है, हम उसको कहते हैं आओ, और यहाँ तपस्या को देख के वो फिर आगे बढ़ता नहीं है और भाग जाता है। क्यों, कौन उसको पकड़ के ले जाती है, माया। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद कहते थे कि कितना खून हम सुखाते हैं तब एक भक्त बनता है, लेकिन माया ऐसी होशियार है कि उसको लुभा के पकड़ के ले जाती है, और बड़ा दुख होता है कोई भक्त बनने के बाद भाग जाता है। तो इस श्लोक का आधार प्रभुपाद का उद्देश्य है इस्कॉन स्थापना का, नारद की तरह जगह जगह जाकर अच्छे लोग जो कुछ धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं उनको कहना चाहिए, भैया ये काय के लिए कर रहे हो, स्वर्ग में जाने के लिए कर रहे हो, स्वर्ग में क्या रखा है, अरे भाई संसार के सुख के लिए करा रखे हो, किसी को संसार में सुख मिला है क्या, तुम्हें यही काम करना है तो भगवान की भक्ति करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। विचार करके देख लो। तो हमारा प्रयास करके लोगों को समझाना धर्म है। जैसे नारद जाके प्राचीन भरत को यज्ञ करते हुए समझाया कि यज्ञ से तुम्हें क्या मिलेगा, वो यज्ञ ही तो कर रहा था, पूजा कर रहा था, उसको जाके समझाया। तो समझने वाले वो ही है जो कैसे कम से कम वैदिक धर्म का पालन कर रहे, लेकिन उनको बुद्धिमानी से समझना है, समझाना चाहिए। नारद ने जाके उनको डांटा टपटा नहीं, बोला ऐसा दुनिया है, आप विचार करते रहो। सामने वाले को विचार करने के लिए तैयार करना चाहिए, अपना विचार उसके ऊपर थोपना नहीं चाहिए। वो अपने विचार करके बाहर निकल सकता है, हमारे जबरदस्ती कहने से नहीं निकल सकता। सो इस्कान की स्थापना प्रभुपाद जी के शब्दों में लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए, एनलाइटन करने के लिए है। तो जब हम लोगों को प्रबुद्ध करने का प्रयास करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? माया। हम प्रबुद्ध करेंगे, माया उसको अंधा करेगी दोबारा। इसलिए हमारे को बहुत सावधान होना चाहिए। माया कभी किसको पकड़ लेगी कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, मैं तो रोज माया को प्रार्थना करता हूं कि मुझे भगवान की सेवा में बाधा मत डालो, क्योंकि जगत की मालिक तो वो है। लेकिन प्रभुपाद कहते थे मेरे शिष्य माया से नहीं डरते, इसलिए कभी कभी माया उनको पकड़ के दबोच लेती है। माया से डरना चाहिए, भगवान का शरण लेना चाहिए और माया से डरना भी चाहिए। ये माया कैसे लुभावनी है कुछ पता नहीं, किस रूप में आ जाए कुछ पता नहीं, भक्त बनने के बाद भी लुभाने के लिए आ जाती है। सो आज के श्लोक में हरियाश्व नारद के उपदेश पहले कि ये पृथ्वी का अंत क्या है, ये पृथ्वी शरीर और जिसका कर्मों के बंधन से कई जन्मों से अनादि काल से भटकते हुए जीव को कैसे मुक्त होना चाहिए, ये उनकी समझ में आ गया। उन्होंने निर्णय क्या लिया कि शरीर भोग के लिए नहीं है, शरीर मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए है। तो आज के श्लोक के दो शब्दों में इसको ले लीजिए कि शरीर भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है, भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए, मानव शरीर विशेष रूप से। और इसमें दो चीजें चाहिए, गुरु का निर्देश और शास्त्र का आदेश, गुरु का और शास्त्र का सहारा चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रिया, कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? क्योंकि आगे श्लोक पढ़ेंगे तो और भी जो नौ चीजें हैं उनका अर्थ भी आज एक एक श्लोक में बताया जाएगा। एक दिन फिर किसी एक दिन करेंगे तो नौ का एक समय में अर्थ कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री प्रभुपाद।